स्वागत। आज हम पौधों की वो दुनिया देख रहे हैं जो दिखती शांत है पर अंदर से बहुत सक्रिय है। खास तौर पर चैप्टर 10 की जो जीवन प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेसेस, उन पर फोकस रहेगा। कोशिश है कि इस चैप्टर की मतलब जो मुख्य बातें हैं वो हम समझें। हमारे स्रोत विज्ञान के इसी चैप्टर 10 से हैं। ये पौधे बढ़ते कैसे हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, पानी और खाना इधर उधर कैसे भेजते हैं और ऊर्जा कैसे पाते हैं, इन सब पर बात करेंगे। तो सवाल यही है कि पौधे जिंदा कैसे रहते हैं, बढ़ते कैसे हैं और हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं, चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं बढ़ने से, ग्रोथ से। पौधों को बढ़ने के लिए क्या चाहिए होता है? बेसिक चीज़ें तो है, रोशनी, पानी, मिट्टी से पोषण और जगह, पर इसमें और क्या खास है?
हाँ, ये बेसिक तो हैं, पर हर एक का अपना क्या कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल है। जैसे पानी, वो सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, फोटोसिंथेसिस के लिए कच्चा माल है, न्यूट्रिएंट्स को घोलकर ऊपर ले जाता है और हाँ, टर्गर प्रेशर बनाता है कोशिकाओं में।
टर्गर प्रेशर मतलब
वो अंदरूनी दबाव जिससे कोशिकाएं सख्त रहती हैं, पौधा सीधा खड़ा रहता है, मुरझाता नहीं। फिर सूरज की रोशनी है, ऊर्जा का स्रोत जिसे क्लोरोफिल पकड़ता है, और मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके, सुना होगा?
हाँ, एनपीके खाद वगैरह में होता है।
बिल्कुल, ये पत्तियों, जड़ों और पौधे की पूरी सेहत के लिए बेहद जरूरी हैं।
और ये सब पहुंचाना कितना मुश्किल हो सकता है? आपने हाइपेरियन पेड़ का नाम सुना है?
हाँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़,
115 मीटर से भी ज्यादा। सोचिए, उतनी ऊंचाई तक पानी और ये एनपीके पहुंचाना, क्या गजब का सिस्टम होगा।
सही कहा, और यही एक आम गलतफहमी भी है। लोग सोचते हैं पौधे मिट्टी से बना बनाया खाना खाते हैं।
अच्छा,
ऐसा नहीं है।
नहीं,
वो सिर्फ कच्चा माल लेते हैं, पानी और घुले हुए खनिज मतलब न्यूट्रिएंट्स। उनका असली भोजन यानी ग्लूकोज,
हाँ,
वो अंदर खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से।
ओह, तो ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? कहते हैं पत्तियां पौधे की फूड फैक्ट्री हैं।
हाँ बिल्कुल, पत्तियां ही मेन जगह हैं। उनमें होता है हरा पदार्थ क्लोरोफिल, जो सूरज की रोशनी सोखता है, और छोटे छोटे छेद होते हैं स्टोमाटा।
स्टोमाटा
गैस एक्सचेंज के लिए।
हाँ, वहीं से हवा की कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है।
तो फोटोसिंथेसिस में पौधे रोशनी की ऊर्जा से इसी CO2 और जड़ों से मिले पानी H2O को बदलते हैं ग्लूकोज में। ये उनका भोजन है, शुगर है, और साथ में बनती है ऑक्सीजन O2।
ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है।
हाँ, वो बस बाहर निकल जाती है हवा में।
कमाल है, मतलब हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन ज्यादातर पौधों के इसी प्रोसेस से आती है। मैंने पढ़ा था कि पृथ्वी के शुरू के वायुमंडल में ऑक्सीजन बहुत कम थी, वो इन्हीं फोटोसिंथेटिक जीवों के वजह से बढ़ी।
बिल्कुल सही, और एक बात और, फोटोसिंथेसिस सिर्फ रोशनी में होता है दिन में, लेकिन रेस्पिरेशन यानी ऊर्जा के लिए ग्लूकोज को तोड़ना, वो दिन रात चलता रहता है।
अच्छा, और पौधे हरे क्यों दिखते?
वो क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल बाकी सारे रंग सोख लेता है पर हरे रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो हमें वो हरा दिखता है।
समझ गए, तो खाना बन गया पत्तियों में, अब ये पूरे पौधे में पहुंचेगा कैसे? और पानी भी तो जड़ों से पत्तियों तक लाना है, ये अंदर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे काम करता है?
इसके लिए पौधे में दो तरह के समझिए पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम, हाँ सुना है।
जाइलम का काम है पानी और उसमें घुले मिनरल्स को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक ले जाना, वन वे ट्रैफिक।
और ये होता है ज्यादातर ट्रांसपिरेशन पुल से।
ट्रांसपिरेशन पुल मतलब पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ना।
हाँ, उसी से खिंचाव बनता है जो पानी को ऊपर खींचता है।
और फ्लोएम, वो पत्तियों में बने भोजन को मतलब सुक्रोज के रूप में पौधे के दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है।
अच्छा, जैसे जड़ों तक, फलों तक।
हाँ, जहां भी ऊर्जा चाहिए या स्टोर करना हो, ऊपर भी नीचे भी। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये दोनों जाइलम और फ्लोएम अक्सर साथ साथ मिलते हैं वैस्कुलर बंडल्स में।
वाकई अद्भुत। कोस्ट रेडवुड्स जैसे पेड़, वो भी तो 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे होते हैं।
हाँ, और वो इसी ट्रांसपिरेशन पुल के दम पर इतनी ऊंचाई तक पानी खींच पाते हैं।
अविश्वसनीय। अच्छा, एक और सवाल, क्या पौधे हमारी तरह सांस भी लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और क्यों?
हाँ बिल्कुल करते हैं। रेस्पिरेशन उनके जिंदा रहने के लिए उतना ही जरूरी है जितना फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस से खाना बना, पर उस खाने से ऊर्जा निकालने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है।
ऊर्जा मतलब ATP?
हाँ, ATP के रूप में। इस ऊर्जा से ही पौधा बढ़ता है, बाकी सारे काम करता है। और ये काम पौधे की हर जिंदा कोशिका में दिन और रात लगातार चलता है।
तो इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए।
हाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है। वे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं और बदले में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा।
ऑक्सीजन लेते कहाँ से है?
स्टोमेटा से।
स्टोमेटा से।
तनों में लेंटिसल्स होते हैं उनसे, और जड़ों की सतह से भी। तो अगर संक्षेप में कहें, फोटोसिंथेसिस खाना बनाता है, CO2 लेता है, O2 छोड़ता है रोशनी में, और रेस्पिरेशन उस खाने से ऊर्जा निकालता है, O2 लेता है, CO2 छोड़ता है हमेशा।
मतलब दिन में दोनों चलते हैं।
हाँ, पर दिन में फोटोसिंथेसिस की रफ्तार ज्यादा होती है रेस्पिरेशन से, इसलिए कुल मिलाकर पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है तो वे CO2 छोड़ते हैं।
समझ गए। तो कुल मिलाकर पौधे बाहर से भले ही शांत दिखें, अंदर एक पूरी केमिकल फैक्ट्री चल रही है। बढ़ना, खाना बनाना, उसे पहुंचाना, ऊर्जा बनाना, सब कुछ कितना व्यवस्थित है।
बिल्कुल, बहुत जटिल और कुशल मशीनरी है। और देखिए, इसी समझ का इस्तेमाल हम हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स जैसी तकनीकों में करते हैं, बिना मिट्टी के पौधे उगाना।
हाँ, सही कहा।
तो इस पर सोचते हुए एक सवाल मन में आता है कि भविष्य में हम पौधों की इन जीवन प्रक्रियाओं की अपनी समझ का इस्तेमाल खाद्य सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और किन नए अभिनव तरीकों से कर सकते हैं? सोचने वाली बात है।
बिल्कुल सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी चर्चा के लिए बस इतना ही। पौधों की दुनिया वाकई हैरान करने वाली है।